السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان اور جنوبی ایشیا کی خبروں سے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے گروپ نے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کی جبری تبدیلی مذہب اور شادیوں میں مبینہ اضافے پر خطرے کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق ماہرین نے پاکستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ قانون سازی اور مجرموں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے انسانی حقوق کے بین الاقوامی وعدوں کے مطابق ان کاروائیوں کی تحقیقات کرے۔ اقوام متحدہ کے بیان پر پاکستانی حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے 5 اگست 2019 کو کیے گئے اقدام کی واپسی کے بغیر نئی دہلی سے بات چیت ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر کے ترجمان نے یہ بات ایک بیان میں ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے دورے میں وزیراعظم شہباز شریف نے العربیہ ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے۔ لیکن انٹرویو نشر ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کے دفتر کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت بھارت 5 اگست 2019 کے اقدام کی واپسی سے مشروط ہے، اور اس اقدام کی منسوخی کے بغیر اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ اتوار کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ حکمراں پیپلز پارٹی کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 93 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ جماعت اسلامی کو 86 نشستیں ملی ہیں اور پی ٹی آئی نے 40 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اگرچہ کسی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں مل سکی اور یہ واضح نہیں ہے کہ کس پارٹی کا میئر منتخب ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے پیش گوئی کی ہے کہ معاشی مسائل کی وجہ سے طالبان کے کچھ جنگجو افغانستان میں داعش خراسان کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نیوز ویک کو بتایا کہ حکومت کو پاکستان کے اندر شدت پسند گروپوں کی سرگرمیوں اور افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کے بارے میں تشویش ہے۔ افغانستان میں ادارہ کیئر وزارت صحت عامہ کی طرف سے ضروری یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ملک میں اپنی صحت اور غذائیت کے کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا۔ کیئر نے حکام کی طرف سے افغانستان میں کام کرنے والی این جی اوز کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگانے کے فیصلے پر کاروائیاں معطل کر دی تھیں۔ تیسری بین الاقوامی این جی او ہے جو افغانستان میں اپنا محدود آپریشن دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ سیو دی چلڈرن اور آئی آر سی پہلے ہی افغانستان میں اپنے ہیلتھ پروگرام دوبارہ شروع کر چکے ہیں۔ کیئر 1961 سے افغانستان میں کام کر رہا ہے اور 7 صوبوں میں 30 موبائل ہیلتھ ٹیمیں چلاتا ہے۔ طالبان حکومت کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ بادغیس، فاریاب، نمروز اور غزنی صوبوں میں گزشتہ 2 دنوں میں شدید سردی کے باعث بچوں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ان صوبوں میں سردی کے باعث 3000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کو گزشتہ ہفتے سے سردی کی لہر کا سامنا ہے اور پیشگوئی کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ لہر اگلے ہفتے بھی جاری رہے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کے اس حالیہ حکم نامے کے خلاف مزاحمت تیز کر دی ہے جس میں علاقے کے سبھی 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے सरकारी अराजी पर मुबैना नाजायज कब्जों और तजावजात को रवां माह जनवरी के आखिर तक खत्म करवाने के लिए कहा गया है। महकमे माल के कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बिधोरी की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के खिलाफ सरमाएदार हुकूमत जम्मू और भारत के जेर निज़ाम कश्मीर के बाज दूसरे मकामात पर गुज़श्ता 3 दिन से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इन मुजाहरों का एहतमाम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और हिजब इख्तलाफ की चंद दीगर जमातों ने किया था। यूक्रेन के हुकाम ने मंगल को बताया कि डेनप्रो में एक अपार्टमेंट की इमारत पर हफ्ते के रोज किए गए मिसाइल हमले में हलाक होने वालों की तादाद इस वक्त 41 हो गई, जब अमले को मलबे से एक बच्चे की लाश मिली। इलाकाई गवर्नर वैलेंटिन रजिंस्को ने कहा कि 25 अफराद अब भी लापता हैं, 90% मलबा साफ कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमले में 79 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 28 अस्पताल में दाखिल हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को अपने रात के खिताब में कहा कि डेनप्रो में हमला यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के बारे में तेज़तर और ज्यादा मरबूत फैसलों की जरूरत को उजागर करता है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल ने डेनप्रो पर हमले और उस जैसे दीगर शहरी अहदाफ पर हमलों को गैर इंसानी जारहियत करार दिया है। उन्होंने इतवार को एक ट्वीट में कहा कि इन जराइम के लिए कोई इस्तेसना नहीं मिलेगा। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी अफवाज ने बारहा शहरी अहदाफ को निशाना बनाया है। अक़्वाम मुत्तहिदा की खातून तर्जमान स्टेफनी ट्रेम्बले के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह जंग के कवानीन की खिलाफवर्जी की एक और मिसाल है। जर्मन वजीर खारजा एनालिना बारबुक ने रूसी नारमाओं के खिलाफ मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा चलाने के लिए खसूसी ट्राइब्यूनल का मुतालबा किया। रूसी हुकाम ने यूक्रेन में शहरियों को निशाना बनाने की बारहा तरतीद की है। क्रेमलिन के दर्जमान दिमित्री पेस्कोफ ने पीर को एक बार फिर कहा कि रूसी अफवाज रिहायशी इमारतों या समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करती, वो फौजी अहदाफ को निशाना बनाते हैं। पेस्कोफ ने कहा कि डेनप्रो की सूरत हाल यूक्रेन के फजाई दिफा का नतीजा है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन जुमे को जर्मनी के एक फजाई अड्डे पर यूक्रेन के इत्तेहादियों की मेजबानी करेंगे, ताकि यूक्रेन के लिए मजीद मगरबी फौजी इमदाद पर तबादला ख्याल किया जा सके। एक आला सतही अमरीकी वफद ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है, ताकि यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत का पैगाम दिया जा सके। इस मुलाकात में नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मिन भी शामिल हैं। शर्मिन ने कहा कि अमरीका, नेटो और पूरी दुनिया के शराकत दार मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि हम इमदाद के अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। महकमे दिफा में पॉलिसी के अंडर सेक्रेटरी कॉलिन कहल ने बताया कि यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद की अव्वलिन तरजीह फजाई दिफा है। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लेवरली रूस के हमले का एक बरस मुकम्मल होने से कबल अमरीका और कैनेडा के दौरे में यूक्रेन के लिए हिमायत को बढ़ाने की कोशिशें करेंगे। ये दौरा आज मंगल को शुरू हो रहा है। क्लेवरली अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और कैनेडियन हममनसब मेलानी जोली को बताएंगे कि यूक्रेन को फौजी मदद देने के लिए ये सही वक्त है। बरतानवी वजारत खारजा ने यह भी कहा कि हफ्ते के रोज बरतानवी ईरानी शहरी अली रजा अकबरी को फांसी के बाद बरतानिया से आर्जी तौर पर अपने सफीर को वापस बुलाने के बाद क्लेवरली अपने दौरे के दौरान ईरान के मौजू पर भी बातचीत करेंगे। अमरीका का एक आला सतही वफद नए तजारती इकदाम पर मुजाकरात दोबारा शुरू करने के लिए इस हफ्ते ताइवान में है। अमरीका के तजारती नुमाइंदे के दफ्तर से चीन के लिए मुआविन तजारती नुमाइंदे टेरी मार्कर्टन ने की क्यादत में ये वफद गुज़श्ता जुमे को ताइपे पहुंचा, ताकि अमरीका ताइवान 21वीं सदी के तजारती इकदाम पर 4 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू कर सके। इस इकदाम में इंसदाद बदउनवानी, ज़रात, डिजिटल तजारत, माहौलियाती और मास्तूरी के तरीकों समेत 11 शोबों का अहाता किया जाएगा। अलशबाब ने मंगल के रोज सोमाली फौजी अड्डे पर एक मोहलिक हमला किया है। हुकूमत ने एक रोज कबल एक स्ट्रेटेजिक साहली शहर पर कब्जा करके जिहादियों पर तारीखी फतह का दावा किया था। इंतहा पसंद जंगजुओं के दारुलहुकूमत मोगदीशु के शिमाल में वाकई कस्बे हवादिली में कैंप पर हमले के बाद हलाकतों की तादाद के बारे में मुतजाद इत्तलात आ रही हैं। आर्मी चीफ अदवो यूसुफ रेज ने कौमी रेडियो पर कहा कि अलकायदा के इत्तेहादी अस्करियत पसंद ग्रुप की जानिब से इस हमले में एक सीनियर अफसर समेत 5 फौजी हलाक हुए हैं। हवादिली के करीब एक कबीले मलेशिया के कमांडर ने कहा कि 11 फौजी हलाक हुए हैं। ऐनी शाहिदीन और सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि जंगजुओं ने मोगदीशु से 60 किलोमीटर शिमाल में कैंप के बाहर धमाका खेज मवाद से भरी कार से हमला किया। अशबाब सोमालिया के दही इलाकों पर काबिज है और इस ग्रुप ने अपने मवासलाती चैनल्स के जरिए हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मशरिकी कोंगो में शिदत पसंदों ने हफ्ते के आखिर में एक चर्च पर होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हुकाम का कहना है कि इस हमले में कम से कम 14 अफराद हलाक हुए। इस्लामिक स्टेट ग्रुप या दाइश और उसको न्यूज आउटलेट अम्माक ने बयान जारी करते हुए कहा कि अस्करियत पसंदों ने एक धमाका खेज डिवाइस से उस वक्त धमाका किया जब लोग इतवार को चर्च के अंदर इबादत कर रहे थे। चीन की माशी नमू को कोविड पर मुल्क में सख्त पाबंदियों की वजह से 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे में अपनी बदतरीन सतह पर गिर गई है। कौमी शुमारियात के ब्यूरो ने मंगल को आदाद और शुमार जाहिर किए जिससे जाहिर होता है कि चीन की मईशत में सन 2022 में सिर्फ 3% इजाफा हुआ जो इससे पहले के 8.1% की सतह से कहीं कम है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत में गुज़श्ता साल की चौथी सेमाही के दौरान 2.9% की कमी वाकई हुई जो सन 2021 की इसी मुद्दत के दौरान 3.9% थी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।